वचन।
बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जमा किया है तूने हमें, मिलकर लाते हैं हम तारीफ तुझे। जमा किया है तूने हमें, मिलकर लाते हैं हम तारीफ तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम सब आते हैं करने धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब कुरिन्थियों के पत्री जो बाइबल के नए नियम के पुस्तक में है उसका अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को और विश्वासियों को वरदान के बारे में बताता है कि किस प्रकार से प्रत्येक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। विशेष करके प्रभु, जब हम आज आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, वरदानों के विषय में जानना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपने अनुग्रह दें, बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी आज हम सीखें निश्चित रूप से हमारे जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारी विनती उन प्यारे भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, अपने जीवन से निराश हैं, थकित हैं, बोझिल हैं, तनाव में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि प्रदान करें, उन्हें शांति और आनंद दें, उनके जीवन की जरूरतों को आप पूरा करें और अपनी महिमा उनके जीवन से लें। आज हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हम सबकी सहायता करेंगे एवं मदद करेंगे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम अपने अध्ययन को आरंभ करें और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति अर्थात अलौकिक काम करने का सामर्थ्य। मित्रों, प्रेरितों के युग में आश्चर्य कर्म होते थे, परंतु आज हम उनसे भी बड़े काम देखते हैं। जब यीशु यहाँ पर था तब उसने बात की और मनुष्य का मन परिवर्तन हुआ, जैसे कुएं पर सामरी स्त्री निकोदिमुस। मित्रों, मुझे इस पर अचंभा नहीं होता, परंतु आपके और मेरे वचनों को सुन यदि कोई मन फिराए तो वह अधिक बड़ा आश्चर्य कर्म है। भविष्यवाणी अर्थात मसीह की इच्छा में प्रकट करना, दूसरे शब्दों में कहें भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन का प्रचार है। आज हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो प्रचार करने के इच्छुक हों। हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है। वे प्रचार करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वह आत्मा द्वारा उस वचन को काम में लेते हैं। तब हम देखते हैं आत्माओं की परख अर्थात सच और झूठ में अंतर करने की क्षमता। मुझे विश्वास है कि मुझ में वह वरदान नहीं है। मेरे विचार में मैं संभवतः प्रचारकों की तुलना में सबसे अधिक धोखा खा चुका हूँ। मैंने मनुष्यों पर विश्वास किया और कुछ प्रचारक और कुछ कलीसियाएं अगुए और सदा उन्हें सच्चा समझता रहा, परंतु उन्होंने मुझे लज्जित किया, इवन कि मेरे कुछ मित्रों ने। मैंने झूठों से और अनिष्ट जनों से धोखा खाया है। मैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा समझता था। मेरे प्रियो, दूसरी ओर आप ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो आत्मा को परख सकते हैं। इस संबंध में मेरी पत्नी से मुझे बहुत अधिक सहायता मिलती है। वह मुझसे कहती है कि आप यह सावधान रहें, उस व्यक्ति से सतर्क रहें। जी हाँ, या यह एक अच्छा मनुष्य है, वह प्रायः सही निकलती है और मैं गलत। उसमें आत्माओं की परख का वरदान है। मेरे मित्रों, एक और वरदान है अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार। मूल लेख में यह नहीं है। क्या ये भाषाएं हैं? नहीं, धर्मशास्त्र में कोई भी अनजान भाषा नहीं पाई जाती है। जब भाषाएं जानी पहचानी हैं, अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनमें आपकी बाइबल का अनुवाद नहीं किया गया है। किसी अनजान भाषा की खोज में समय गंवाने की अपेक्षा हम क्यों ना उन भाषाओं में धर्मशास्त्र का अनुवाद करें जिनमें बाइबल अभी तक उपलब्ध नहीं है या नहीं पहुंची है। कुछ लोगों को अनुवाद का वरदान प्राप्त है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मित्रों, इन सब बातों में पवित्र आत्मा ही प्रथम प्रधान है, परंतु हमें सर्वोत्तम दान या वरदान के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है। यही पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए प्रस्तावित करता है। वे संसारिक विश्वासी थे जो अत्यधिक निम्न आत्मिक स्तर पर निर्वाह कर रहे थे। वे अन्य भाषा बोलने के लोभ में थे और यही कारण है कि पौलुस इस पत्र में इन बातों का उल्लेख करता है। वह कुरिन्थ की कलीसिया की त्रुटियों को सुधार रहा है। वहां अनेक भ्रमित विचार थे। वह उन्हें समझाता है कि वरदान अनेक हैं और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से विश्वासियों में उनका वितरण करता है। मेरे मित्रों, मानवीय देह के अंगों की तुलना में पवित्र आत्मा के वरदान, आइए देखें पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। मित्रों ध्यान दीजिए, इस गद्यांश को समझने के लिए हमें दो पदों को देखना आवश्यक है। पद 20 लिखा है, अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। पद 27, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। पौलुस मानव शरीर का उदाहरण दे रहा है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अनेक अंगों से बना होता है जिनके काम अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार कलीसिया के सदस्यों के भी अपने अपने काम हैं जिन्हें करना उनके लिए आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में अनेक अर्थात सैकड़ों वरन हजारों अंग हैं। कलीसिया मसीह की देह में सैकड़ों वरन हजारों वरदान है। मेरे मित्रों, एक बार जंगल में ऐसे दौड़ते समय मुझे एक पत्थर से चोट लग गई और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने पूछा कि पांव में कितनी हड्डियां होती है, तो कहा 27 हड्डियां होती है। मैंने कहा, मेरे विचार में सब हड्डियों में चोट लगी है। जी नहीं, उन्होंने कहा, आपकी केवल एक हड्डी में चोट लगी है। अब मैं कह सकता हूं कि चोट चाहे एक ही हड्डी में लगी भी थी परंतु दर्द पूरे पांव में था। एक अंग को कष्ट हो तो सबको कष्ट होता है। मेरे मित्रों, देह के अनेक अंग होते हैं, उसमें हड्डियां, ग्रंथियां, अंग, तंत्रिका, तंतु, रक्त नालिकाएं इत्यादि। एक बार मैं किसी स्कूल के वार्षिक उत्सव में वचन देने के लिए गया हुआ था और इसके बाद एक डॉक्टर के घर भोजन के लिए गया। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग पता है। मैं उनसे बातें कर रहा था, अतः मैंने कहा जीभ। उन्होंने कहा, नहीं, आपकी देह का सबसे महत्वपूर्ण भाग वह है जिसके प्रति आज कोई सजग नहीं है, यह आपका पांव का अंगूठा है। क्योंकि यदि आपके पांव में अंगूठे नहीं हो तो आप खड़े ही नहीं रह सकते। मेरे मित्रों, मैंने इस विषय में बहुत सोचा। यदि मैं कहीं प्रचार करने जाऊं और मेरा पांव का अंगूठा विद्रोह कर दे और कहे, मैं बहुत वर्षों से तुम्हारे साथ घूम रहा हूं परंतु तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। मनुष्य आपके चेहरे, होंठ, जीभ पर ध्यान देता है परंतु वे मुझे कभी नहीं देखते। तुम अपने जूते उतार कर कभी कभी मेरा प्रदर्शन क्यों नहीं करते? अतः मेरे विचार में तो मनुष्य मेरे पांव का अंगूठा देखना ही नहीं चाहेगा। उसमें आकर्षण वाली बात तो है ही नहीं। सच तो यह है कि वह कुरूप है परंतु है एक महत्वपूर्ण अंग। इसी प्रकार से मसीह की देह में अनेक अंग हैं जिनमें से कुछ पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मित्रों, कलीसियाओं में कुछ महत्वपूर्ण मनुष्य वे थे जिनके बारे में कलीसिया ने कभी कुछ नहीं जाना। वे न तो संडे स्कूल शिक्षक थे, न गायक, न प्रचारक थे। वे शांत, कम बोलने वाले लोग थे जिन्होंने केवल प्रार्थना की और विश्वास के वरदान का अभ्यास किया। अब मसीह की इस देह में कोई प्रवेश कैसे करता है? पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेरे मित्रों, यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा ही हमें विश्वासियों के देह में जोड़ता है और हर एक को वरदान देता है। हमें इस देह में काम करना है और अपने वरदान का उपयोग करना है। अति संभव है कि हम पांव के अंगूठे हैं जिनकी सेवा अप्रत्यक्ष वरन महत्वपूर्ण है। हम में से हर एक के पास वरदान है और हमें क्रियाशील रहना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 14 से 17 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता, यदि सारी कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता। मित्रों, मान लीजिए कि आज प्रेरितों के युग की नाई अन्य भाषा बोलने का वरदान आ जाए, तो भी सच तो यही है कि हर एक मनुष्य अन्य भाषा नहीं बोलेगा। इसका रूपक हमारी देह है, जिसका हर एक अंग जीभ तो नहीं है ना। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो केवल जीभ ही हैं, परंतु वे यदा कदा ही हैं। पवित्र आत्मा सबको एक ही वरदान नहीं देता है, अलग अलग मनुष्यों को परमेश्वर का आत्मा अलग अलग वरदान देता है, जिससे कि मसीह की देह अपनी आवश्यक क्षमता में कार्य करे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। मित्रों, परमेश्वर ही है जो अपनी दिव्य इच्छा से वरदान देता है, और वह जिसको जो चाहे देता है। अतः हमें उसी को प्रसन्न करना है। वरदान देह में है, जिससे कि देह सुचारू रूप से काम करे। मेरे मित्रों, एक कलीसिया में एक पुरुष के पास असामान्य वरदान था, और वह आराधना में पीछे खड़ा होकर विघ्न को नियंत्रण में रखता था। यदि कोई शिशु रोए तो स्वयं सेवक माता को झिड़कते थे, परंतु यह व्यक्ति माता के पास जाकर शिशु के साथ खेलता और कहता, हमारे पास यहाँ नर्सरी है, क्या आप उचित समझते हैं कि मैं शिशु को वहां ले जाऊं या आपका वहां तक मार्गदर्शन करूं। और माताएं तुरंत उसकी बात मान लेती थी। उसमें मनुष्यों के साथ व्यवहार करने की कला थी। मैंने उससे कहा कि उसका वरदान असामान्य है और कलीसिया में अति आवश्यक भी है। मेरे प्रियो, आप आश्चर्य करेंगे कि यह भी एक वरदान है। जी हाँ, यह वरदान है। खाना पकाना, सिलाई करना भी एक वरदान है। हम बाइबल की घटनाओं में वरदानों की झलक देख सकते हैं। हनन्याह और सफीरा वरदान संपन्न थे, परंतु उन्होंने स्वयं को प्रभु के अधीन नहीं किया था। उनके वरदान प्रभु के निमित्त क्रियाशील नहीं थे, अतः वे शमौन पत्रस के समक्ष गिरकर मर गए। वे आरंभिक कलीसिया में रहने योग्य नहीं पाए गए। उनको वरदान प्राप्त थे, परंतु वे उन्हें यथोचित रूप में काम में नहीं ले रहे थे। मेरे मित्रों, बाइबल में एक महिला दोरकस थी। उसे सिलाई का वरदान प्राप्त था। वह मसीह की प्रभुता के निमित्त अपना वरदान काम में लेती थी। वह प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना वरदान काम में लेती थी। उसकी मृत्यु पर शमौन पत्रस याफा गया, और विधवाओं ने पत्रस को वे वस्त्र पहनकर दिखाए जो दोरकस ने सिले थे। उन्होंने वे वस्त्र पहनकर दिखाए, क्योंकि उन गरीब महिलाओं के पास पहनने के लिए और कुछ नहीं था। दोरकस का वरदान आरंभिक कलीसिया में ऐसा महत्वपूर्ण था कि पत्रस को उसे जीवित करना पड़ा। उसके वरदान की आज भी आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, शमौन पत्रस के पास भी वरदान था। वह पेंतिकुस्त के दिन का प्रचारक था। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य रूप से काम में लिया। जब परमेश्वर को उसके वरदानों की आवश्यकता नहीं रही, तो वह मर गया। वह मृतकों में से फिर जीवित नहीं किया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इन सब बातों में प्रभुता रखता है। वही निर्धारित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको खाना पकाने के लिए या कपड़े सिलने के लिए बुलाया है, तो आप वही करें। यह आपका वरदान है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम अपना वरदान काम में लें और उसे मसीह यीशु की प्रभुता में समर्पित कर दें। आप इसे छोटा या कम ना आंकें। पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। मेरे मित्रों, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, और प्रभु हम सबको काम में लेना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 23 से 25 में लिखा है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी आदर हो। 25 पद में लिखा है, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। मेरे प्रियो, आप किसी दुबले पतेले युवक को व्यायाम करते देख सकते हैं। वह मांसपेशियों का विकास करना चाहता है, वह शारीरिक शक्ति में विकास करना चाहता है, अर्थात वह यत्न करता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी विश्वासियों की देह पर ध्यान देता है, जिससे कि छोटे वरदानों में विकास हो। मेरे विचार में कलीसिया में भी अनेक वरदानों के विकास की आवश्यकता है। जी हाँ, संभवतः आप सोचते होंगे कि आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। संसार में सर्वाधिक रोमांचकारी बात यह है कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, आपको कहाँ भेजना चाहता है, उसे जाने। विशेष करके जब आप जवान हैं, युवा हैं, कैसा आनंद, कैसा अनुभव, कैसी नई खोज की, जाने कि परमेश्वर ने आपको कौन सा वरदान दिया है। पौलुस कहता है कि यह सब इसलिए आवश्यक है कि मसीह की देह में विभाजन ना हो, सब सदस्यों में एक दूसरे के लिए बराबर की चिंता का भाव होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। मेरे मित्रों, कलीसिया में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, हम सब एक ही देह के अंग हैं। यदि एक को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो सबको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यदि एक को कष्ट होता है तो सबको कष्ट का अनुभव होता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। उपकार करने का वरदान, यह कैसा अद्भुत वरदान है। यदि आपको यह वरदान प्राप्त है तो मैं आशा करता हूं कि आप उसका पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 29 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? मेरे मित्रों, आज इनमें से कुछ वरदान विलोप हो गए हैं, वे कलीसिया में नहीं हैं, क्योंकि उनकी अब आवश्यकता नहीं है। अब कलीसिया में ना तो प्रेरित हैं और न ही भविष्यद्वक्ता, जो भावी कहने वाले हैं। पौलुस स्पष्ट कहता है कि सबको सब वरदान प्राप्त नहीं है। क्या सब प्रेरित हैं? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। क्या सब आश्चर्य कर्म करते हैं? क्या सबके पास चंगाई का वरदान है? क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? उत्तर है, नहीं, वे नहीं करते। तब हम अंतिम पद पढ़ते हैं इस अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 पद, लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। मेरे मित्रों, यद्यपि वरदानों के देने में पवित्र आत्मा ही परम प्रधान है, हमें अधिकार है कि हम परमेश्वर से वह वरदान मांगे जो हम चाहते हैं। पौलुस कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मेरे मित्रों, मैं एक विश्वासी परिवार से हूँ, अतः मुझे आरंभिक मसीह शिक्षा ठीक से नहीं मिली थी। जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए गया हुआ था, तब मुझे बाइबल की पुस्तकों के नाम और बहुत से ज्ञान की बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, अतः मैं इसी प्रकार का प्रचारक भी था। तब मैंने धीरे धीरे परमेश्वर के दासों के द्वारा अन्य बातों को सीखना आरंभ किया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु ने यह नहीं कहा, मेरे जिराफों को चरा। अतः मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं ऐसा प्रचारक बनना चाहता हूँ, मनुष्यों की सेवा करना चाहता हूँ। आगे चलकर के मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वरदानों को पहचाने। आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैंने तुझसे याचना की थी, मुझे सिखा कि मैं अपने लोगों के बीच में उन वरदानों को निखार सकूं जिसे परमेश्वर आज मुझे और आपको देते हैं। मेरे मित्रों, आपको बड़े बड़े वरदान मांगने का अधिकार है। मुझे कुछ लोगों ने लिखा है, मुझे पूरी आशा है कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है। आपकी जानकारी के लिए, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है जो एक अनुभव और उद्धार का परिणाम नहीं परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे विश्वासियों की देह में रखा है, यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वे यह भी लिखते हैं, हम आशा करते हैं कि आप अन्य भाषा बोलेंगे। मेरी प्रार्थना है कि मैं अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा अधिक अच्छी तरह से बोलूं। क्यों? सीधा सा उत्तर है, परमेश्वर हमें लाभ के निमित्त वरदान देता है जो कलीसिया का धन है। परमेश्वर आपको जो भी वरदान दे उसका उद्देश्य है विश्वासियों की सहायता करना, देह के अन्य अंगों की सहायता करना, सिर्फ अपने ही नहीं परंतु कलीसिया के विकास के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम भी उन वरदानों को पहचाने, परमेश्वर से उन वरदानों को मांगे जो अपनी कलीसिया के विकास में लाभकारी हो सके, क्योंकि वरदान कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर देता है और सबको अलग अलग वरदान देता है ताकि कलीसिया का विकास हो सके। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन के उन वरदानों को पहचानने का यत्न किया है। इतना ही नहीं, आप उसे जानें और उस वरदान को अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने वरदानों को जान करके उसके लिए इस्तेमाल करें। मेरे मित्रों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, सबकी सहायता करे ताकि हम प्रतिदिन कलीसिया में आगे बढ़ने पाए।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जलमा जिंदगी हमारी यीशु के दिए, जलमा जिंदगी हमारी यीशु के दिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो बेपनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा,